हाफ़स गांव में पूरे दिन घूमने के बाद देव और वैदेही एक घर में गए, जहां उन्हें एक लड़की के किडनैप होने के बारे में पता चला। लड़की के घर वाले काफी परेशान थे क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में वैदेही और देव ने उनकी मदद करने की ठानी। अब आप हमें सारी बात शुरू से बताइए और घबराइए मत, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, वैदेही ने उस औरत से कहा। उस औरत ने अपने ससुर की तरफ देखा, वो इशारों ही इशारों में उनसे सब बताने की इजाज़त मांगने लगी। बूढ़े आदमी ने भी उसके इशारे को भांप लिया। उसने जवाब में कहा, अब छुपाकर भी क्या फ़ायदा होने वाला है चंपा, शुक्र मनाओ कि कोई तो हमारी मदद के लिए आगे तो आया। जी बाबा, चंपा ने हामी भरी और वैदेही को सब बताने लगी। ये इस गांव में पहली बार नहीं हुआ जब वो लोग किसी लड़की को उठाकर लेकर गए हैं। आज से पहले भी बहुत बार रात के अंधेरे में यहाँ पर लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। ऐसे कैसे कोई किसी को उठाकर ले जा सकता है? क्या यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती? अरे, कानून नाम की भी कोई चीज़ है। उसकी बात सुनकर देव को बहुत गुस्सा आया और उसने झल्ला कर कहा, सब पैसे का खेल है बेटा, क्या पुलिस और क्या कानून, बूढ़े आदमी ने दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया। हम लोग रात को हमारी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। यहाँ सूरज ढलते ही सब लोग बाहर का काम निपटाकर अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई काम हो भी तो घर का आदमी ही बाहर जाता है। गुड़िया के बाबा के मौत को 5 साल हो गए हैं, बस तब से इनके दादाजी ही हमारा सहारा है। कल रात को बाबा की तबीयत बहुत खराब थी। चंपा उन्हें सारी बात बता ही रही थी कि बीच में बूढ़ा आदमी सुबकने लगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना वो मेरे लिए दवाखाने से दवाई लाने जाती और ना ही वो लोग उसे उठाकर ले जाते, उसने कहा। आपको कैसे पता चला कि रेखा गायब हो गई है और उन्हें उठाकर ले जाने वाले वही आदमी है, वैदेही ने हैरानी से पूछा। मैंने बताया ना, यहाँ पहले भी गांव की कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। जब भी वो किसी को उठाकर ले जाते हैं, उनके घर वालों के बारे में पूछते हैं। रेखा ने भी अपने घर वालों के बारे में बताया होगा, तो उन्हें गुड़िया के बारे में पता चला। सुबह सुबह बाबा के फ़ोन पर एक आदमी का फ़ोन आया था और उन्होंने रात के समय गुड़िया को बाहर भेजने का कहा था। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो वो मेरी रेखा को मार देंगे, बताते हुए चंपा फूट फूट कर रोने लगी और उसने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। गुड़िया भी उसके ऐसे करने से घबरा गई, वो भी रोने लगी। देव और वैदेही को उनकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। क्या आपने पुलिस या गांव के सरपंच से बात की? देव ने पूछा। हमने कहा ना बेटा, पहले भी गांव की और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। शुरू शुरू में सारे गांव वाले इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन गए थे, पंचायत पर भी धरना किया था, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। उन लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, बूढ़े आदमी ने बताया। आप उनसे बेवजह डर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वैदेही ने कहा। नहीं दीदी, रेखा दीदी की दोस्त सुनीता दीदी को भी वो लोग उठाकर ले गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी छोटी बहन को भी भेज दो। जब उन्होंने नहीं भेजा तो उन्होंने उनके बाबा को मार डाला और सुनीता दीदी की भी लाश गांव के कुएं में लटकी हुई थी, गुड़िया ने उन लोगों को किसी पुरानी घटना के बारे में बताया। इन सबकी जड़ एक ही है, राघवेंद्र प्रताप सिंह। ना वो अपने रिश्तेदारों के किए हुए गुनाहों पर पर्दा डालता और ना ही इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ती। जहाँ आज लड़कियों को आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करना चाहिए, वहीं ये उन्हें घर पर कैद रहने पर मजबूर कर रहे हैं, वैदेही ने गुस्से से कहा। तो आपने क्या करने का सोचा है वैदेही मैम? देव ने पूछा। देव सहित चंपा, गुड़िया और वो बूढ़ा आदमी वैदेही की तरफ से उम्मीद से देख रहे थे। वैदेही भी अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना प्लान उनके सामने रखा। मैंने सोचा है कि गुड़िया की जगह वहां पर मैं जाऊंगी, वैदेही के कहते ही चारों उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। गुड़िया का परिवार शांत था। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता वैदेही मैम, हम यहाँ पर इस केस के बारे में पता लगाने आए थे, राघवेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आए थे, ना कि आपकी जान जोखिम में डालने, देव ने कहा। मैं जानती हूँ कि ये कदम मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम नहीं जानते कि वो लोग लड़कियों को कहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे पास यश का सपोर्ट है, हमारे पास मीडिया का सपोर्ट है। डोंट वरी देव, हम कर लेंगे, वैदेही ने विश्वास से कहा। मुझे नहीं लगता कि प्रतीक सर आपको जाने की इजाज़त देंगे, देव बोला। हाँ जानती हूँ, उनसे परमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन साथ ही ये भी जानती हूँ कि उन्हें कैसे कन्विंस करना है, वैदेही ने मुस्कुराकर कहा। वो चंपा के पास जाकर बोली, क्या उन्होंने कभी गुड़िया को देखा है? हम इस बारे में नहीं जानते, लेकिन वहां से एक लड़की भाग कर आई थी। उसने बताया था कि वो लोग बहला फुसलाकर उनसे उनके परिवार वालों से के बारे में पूछते हैं, कोई प्यार से मान जाता है तो किसी को मारने की धमकी देते हैं, चंपा ने बताया। अगर वो किडनैप की हुई लड़की से उनके घर वालों के बारे में पूछते हैं तो सिर्फ नाम के अलावा और कुछ पता नहीं चलता होगा। अच्छा, क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ जो वहां से भाग कर आई थी? वैदेही ने पूछा। बेटा, उनकी तो अगले दिन ही पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। समझ नहीं आता कि अब अपनी बच्चियों को बचाएं या फिर बाकी के घर वालों को, बूढ़े आदमी ने अपनी व्यथा सुना दी। उन लोगों को वहीं छोड़कर देव और वैदेही प्रतीक से बात करने के लिए किसी कमरे में गए। ये लोग सच में बहुत परेशान हैं, मेरा तो इन सब के बारे में सुनकर ही खून खौल जाता है। सोचो, ये लोग तो इतने सालों से इन सब चीजों को झेल रहे हैं, वैदेही ने अंदर आते ही कहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत तकलीफ में है। एक बार फिर सोच लीजिए, आपको उस बच्ची की जगह नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उस बच्ची को भी उनके पास भेजा जाए। तुम्हारे पास कोई और प्लान है? वैदेही ने पूछा। देव ने हां में सिर हिलाते हुए कहा। हम गुड़िया को उनके पास भेज देते हैं और उसके पीछे छुपकर हम दोनों उनमें चले जाएंगे। प्लान अच्छा है, लेकिन मैं उस बच्ची की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। ऐसा करो, तुम बाहर जाकर उन्हें संभालो, मैं तब तक प्रतीक सर और यश से बात करके आती हूँ। वैदेही के कहने पर देव बाहर चला गया। उसने तुरंत प्रतीक को कॉल किया। हाँ वैदेही, बोलो। प्रतीक ने फोन उठाते ही कहा। वहाँ सब ठीक है ना? कुछ लीड मिली तुम लोगों को?
नहीं सर, पर ऐसा समझ लीजिए कि क्रिमिनल भी अब ज्यादा दूर नहीं है। पूरे दिन भटकने के बाद फाइनली यहाँ कोई हमारी मदद करने के लिए, या यूं कहो कि मदद लेने के लिए तैयार हो गया। यहाँ गांव में एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स चाहते हैं कि उसकी छोटी बहन को भी भेजा जाए। वैदेही ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बता दी थी जो यहाँ आकर उसे पता चली थी। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है वैदेही, मैं जानती हूँ कि तुम यही कहोगी कि उस लड़की की जगह मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। प्रतीक समझ चुका था कि वैदेही ने किस लिए कॉल किया है। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आगे कहा, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? आपको क्या लगता है प्रतीक सर? वैदेही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर तुम्हें रुकना ही नहीं है तो फिर परमिशन लेने के लिए कॉल ही क्यों किया है? प्रतीक ने छल्ला कर जवाब दिया। वैदेही जब भी उसकी बात नहीं सुनती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। अब इसमें चिल्लाने की क्या बात है? आप चिल्लाएंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। कंट्रोल प्रतीक, कंट्रोल, प्रतीक ने खुद से कहा। मैं नहीं चिल्ला रहा, तुम बताओ कि तुमने किस लिए कॉल किया है।
हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लाइव रिकॉर्डिंग करने वाली टीम का अरेंजमेंट करवा दे और साथ ही यशवर्धन को कॉल करके कहें कि यहाँ की स्पेशल पुलिस को बैकअप तैयार करवा दे। जब भी मैं मदद के लिए कहूँ, उसके अगले 10 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। ऑल्दो मैं अपनी लाइव लोकेशन उन्हें सेंड करती रहूँगी, फिर भी मुझे कोई रिस्क या देरी नहीं चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना और देव को अपने साथ रखना, कहकर प्रतीक ने कॉल कट कर दिया। प्रतीक ने उसी वक्त अनंत त्यागी को फोन करके स्पेशल पुलिस टीम का अरेंजमेंट करवा दिया था। दूसरी तरफ वैदेही ने रेखा के सलवार कमीज पहने और उस पर दुपट्टा लगा लिया। वो बिल्कुल रेखा की तरह लगने की कोशिश कर रही थी। तैयार होने के बाद वैदेही बाहर आई, जहां पर बाकी के लोग मौजूद थे। उसे देखने के बाद रेखा की माँ चंपा भावुक हो गई और उसके पास आकर बोली, मेरी रेखा भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होती है, पूरा एक दिन हो गया उसको गए हुए, आप उसको लेकर आ तो जाएंगी ना मैडम जी? बोलते हुए वो रोने लगी। वैदेही ने उसे चुप करवाया, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको और इस गांव को इस डर के साई से बाहर निकाल सकूं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। चंपा ने अपने दोनों हाथ से वैदेही को आशीर्वाद दिया। देव अभी तक वैदेही के वहां जाने के फैसले से खुश नहीं था, वो एक कोने में चुपचाप खड़ा था। वैदेही उसके पास गई और बोली, अब तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाओगे तो मेरी हेल्प कौन करेगा? देव ने वैदेही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बोला, काका, गांव में लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी उठाकर ले जाते हैं क्या? उसके इस सवाल से बूढ़ा आदमी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने नामे सिर हिला दिया। देव वहां से वापस वैदेही के पास आया और कहा, जैसे आप यहां आने के लिए लड़का बनकर आई थी, वैसे ही मैं आपके साथ चलने के लिए लड़की बन सकता हूं। मैं बड़ा सा घूंघट पहन लूंगा जिससे वो मुझे नहीं पहचानेंगे। देव, वो लोग औरतों को नहीं लड़कियों को उठाते हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहां पर अकेली जाऊंगी? क्या सच में? क्या आप भी मुझे अपने साथ लेकर चलेंगी? हाँ जरूर, वैदेही ने देव की बात पर हामी भरी और फिर चंपा से पूछा, क्या आपके पास कोई बाइक है? हाँ, एक मोटरसाइकिल है जो गुड़िया के बाबा की थी। उनके जाने के बाद किसी ने उसे छेड़ा तक नहीं, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। बिना पेट्रोल के आप उसे? चंपा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि देव बीच में बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आप बस मुझे चाबी दे दीजिए। अच्छा, इस गाँव में बाकी घरों में तो मोटरसाइकिल होगी ना? चंपा ने उसकी बात पर हामी सिर हिलाया। ठीक है, फिर हो गया इंतजाम। आप ऐसा कीजिए कि मुझे एक खाली बॉटल भी दे दीजिए। चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि देव क्या करने की सोच रहा है। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और मोटरसाइकिल की चाबी देव को पकड़ा दी। गुड़िया ने उसे अंदर से एक खाली बॉटल ला कर दी। देव वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसके हाथ में पेट्रोल की भरी हुई बॉटल थी। वैदेही ने उसे देखकर कहा, चोरी करना बुरी बात है, ये सब मुझे आपने ही सिखाया था। देव ने वैदेही को घूर कर देखा और जवाब दिया। जवाब में वैदेही मुस्कुरा दी। दोनों ने उन लोगों को अलविदा कहा और साथ ही उनकी बेटी को वापस लाने का आश्वासन दिया। उसके बाद देव और वैदेही वहां से गांव के बाहर की तरफ चले गए। पूरा गांव सुनसान पड़ा था और वहां कोई मौजूद नहीं था। देव किसी पेड़ के पीछे छुपकर तो वैदेही वहां पेड़ के पास खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक गाड़ी के आने की आहट हुई, उसी के साथ दोनों चौकन्ने हो गए।